अच्छा
सवाल यह है कि परफ्यूम, लोशन वगैरह जिसमें अल्कोहल होता है, उसके इस्तेमाल का क्या हुक्म है? अल्कोहल आजकल जो होता है वो शराब से नहीं बनता, बल्कि केमिकल्स वगैरह से बनाया जाता है। एक तो उसूली मसला है कि पहले ज़माने में जब शराब से अल्कोहल बनाया जाता था तो शराब में भी इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाह, हमारे इमाम हनफिया में जो दो बड़े हैं, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाह, इन दोनों हज़रात के यहाँ खजूर और अंगूर से बनने वाली शराबों का तो मामला मुख्तलिफ है। उनके अलावा जो शराब बनती थी वो नापाक नहीं होती थी। पीना हलाल है हराम है वो अलग मसला, लेकिन नापाक नहीं होती थी। लेकिन आजकल तो वो शराब इसके बग़ैर ही वैसे ही अल्कोहल बना दे देते हैं केमिकल से, तो इसलिए वो नापाक नहीं है। तो उसको अगर परफ्यूम में, लोशन में अगर है और उसको इस्तेमाल किया जाए तो नमाज़ पढ़ सकते हैं उसे लगाकर, नापाक नहीं कहलाती। हाँ अलबत्ता बाज़ उलमा के नज़दीक, बल्कि इमाम मोहम्मद और दूसरे इमाम शाफ़ी वगैरह उन हज़रात के नज़दीक, ये जो भी चीज़ें नशा पैदा करती हैं उसको वो कहते हैं कि वो नशा पैदा करने वाली चीज़ को वो नापाक भी कहते हैं, नजस कहते हैं। तो उन हज़रात के कौल के लिहाज से ये चीज़ नापाक समझी जाएगी। हनफिया के लिहाज से यानी इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह के कौल के लिहाज से नापाक नहीं समझी जाएगी। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि फतवा तो यही है कि अल्कोहल वाला परफ्यूम या लोशन वगैरह लगाना जायज़ है और उसके साथ नमाज़ पढ़ना ये भी दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई तकवा और दूसरे अइमा के कौल की वजह से एहतियात पर अमल करना चाहे तो एहतियात पर अमल कर ले, अच्छी बात है, लेकिन फतवे के लिहाज से, मसले के लिहाज से वो चीज़ नापाक नहीं है। सवाल है, फ़र्ज़ नमाज में खुशू पैदा करने के लिए तिलावत के माना पर गौर करें, जो पढ़ रहे हैं उस पर गौर करें, वो सबसे अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा अगर उस पर ध्यान नहीं लगता तो फिर अल्लाह ताला के सामने और किसी अमल को याद करके, जिससे भी ध्यान ज़्यादा लगे नमाज में कि अल्लाह के सामने हम खड़े हैं। असल तो वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बताया कि जैसे हमारा कोई बड़ा ये तसव्वुर करे कि अभी हमारे कोई बड़े हमारे पास खड़े होते और हमें देख रहे होते, हमारे दिमागी हालत भी देख के उनको नज़र आ रही होती कि हम कहाँ सोच रहे हैं, और जाहिर भी देख रहे हैं कि हम कहाँ देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो हम कितनी अच्छी तरह नमाज़ पढ़ेंगे ये सोचें कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। ये तसव्वुर कायम करने की कोशिश करें, वो सबसे अच्छा है, वरना जो कुछ पढ़ा जा रहा है उसके माना पर गौर कर लें, उससे भी ध्यान लगने में मदद मिलती है। आईब्राउज को ट्रिम करना, ब्लीच करना, आँखों के जो ऊपर ये जो भवों के जो बाल हैं उनके उन बालों को निकाल कर इनको बारीक करना, इस पर तो बड़ी सख्त वाइद आई है अहादीस में। लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लानत का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा गुनाहों पर नहीं होता, तो लानत का लफ्ज़ वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, इसका मतलब है वईद बड़ी सख्त है, इसकी बहुत नापसंदीदा चीज़ है। लेकिन अगर कोई शख्स बाल निकाले नहीं बल्कि बालों को ब्लीच कर लिया जाए तो जाहिर है कि बाल निकालने पर जो वईद है, जो हुरमत है, वो तो नहीं होगी। किसी दर्जे में हम कह सकते हैं कि अच्छा उसके साथ मुशाबहत हो गई, लेकिन इसको हराम या उस दर्जे की वईद वो नहीं कह सकते, ना करो अच्छा है। एक और बात यहाँ पर ये जहन में रहे, एक और बात ये जहन में रहे कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि एक बाल, एक दो बाल इधर उधर बाहर निकले हुए हैं। एक होता है बारीक करना, एक होता है एक दो बाल इधर उधर निकले हुए हैं, उन बालों को अगर निकाल दिया जाए तो ठीक है, लेकिन ये ख्याल रखते हुए कि एक दो बाल निकालने के बाद फिर और एक दो बाल बाहर नज़र आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अच्छा एक दो बाल निकाल लिए, अच्छा फिर एक दो और नज़र आ रहे हैं, अच्छा एक दो और निकाल लिए, फिर तो आखिर में जाकर वो लकीर बन जाएगी। बहरहाल उसको बिल्कुल बारीक जो शेप बनाया जाता है, जो डिज़ाइन बनाई जाती है, उस तरीके से न किया जाए, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। असल पूरी कोशिश ये की जाए कि वो अपने हाल पर रहने दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम वाइद के मुस्तहिक हो जाएं। अगर किसी औरत के बाल ज़्यादा ही बड़े हो जाएं, बहुओं के बाल, या किसी मर्द के भी अगर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएं और आंखों पे आने लगें, यानी आम जो बाल हुआ करते हैं उससे ज़्यादा ही बड़े हो जाएं, तो अलग बात है, वरना आम हालात में उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। क्या हर खाना खाना बनाते वक्त मेहमान की नियत करें? मेहमान बाहर का होना ज़रूरी नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इरशाद है कि अपने घर वालों को खिलाना ये भी सवाब है, तो मेहमान आ रहे हो तो भी ठीक है, मेहमान नहीं आ रहे तो दूसरे जिनके लिए पकाया जा रहा है उनकी नियत कर ली जाए कि अच्छा उनके लिए पकाया जा रहा है, ख़ुद भी खा लेंगे, तो अपने लिए हो, अपने लिए होने के बजाय दूसरों के लिए नियत कर लें। और दूसरे ज़रूरी नहीं कि बाहर के अजनबी मेहमान हों, घर वालों के लिए पकाना ये भी सवाब का काम है। सवाल ये है कि सनराइज़ की कितने मिनट के बाद इशराक पढ़ सकते हैं? टाइम फिक्स करना तो मुश्किल है, लेकिन अंदाज़े के लिहाज से कह सकते हैं कि 10 से 15 मिनट। दस से पंद्रह मिनट इसलिए कि दिन कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, तो सर्दियों के ज़माने में दिन छोटा है तो 10 मिनट काफ़ी हो जाएंगे, कभी 10 से भी थोड़ा कम हो सकता है, और जब दिन लंबा होता है गर्मियों के अय्याम में तो 15 मिनट हो जाएंगे, तो इसलिए वो 10 से 15 मिनट होता है दिन के छोटा बड़ा होने के लिहाज से, उसमें फ़र्क पड़ रहा है। एक और सवाल है, ये वेलेंटाइन्स जो आ रहा है, असल बात यह है कि यानी इस तरह की खुशियों में हिस्सा लेना, हाँ वाकई असल ये बात यह है कि इंसान ये समझ जाए कि जिसको हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था कि हमें किन का तरीक़ा इख्तियार करना है, कौन हमारे लिए रोल मॉडल हैं, कौन हमारे लिए उसवा हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना। हम सुन्नतों से वाकिफ़ होते नहीं, सुलहा के तरीक़ों से हम पूरी तरह वाकिफ़ होते नहीं, लेकिन गैर मुस्लिमों के माहौल में रहने की वजह से इनके तौर और तरीक़ से हम वाकिफ़ होते हैं। ये हमारा कसूर है कि हम ऐसे माहौल में रहते हैं, अपने आप को रखा है, अपने बच्चों को रखा है ऐसे माहौल में कि जिसकी वजह से इन चीज़ों को तो हम सीख रहे हैं और दूसरी चीज़ें हम नहीं सीखते जो सीखनी चाहिए। बहरहाल असल तो हमारा इसमें कसूर है, और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाज़ रिवायात में इतना करीब गैर मुस्लिमों के साथ मिलजुल कर रहना जिससे हमारे दीनी लिहाज से हमें नुकसान वाक़ हो, इससे मना फरमाया है। ये चीज़ें बहरहाल अब बच्चों को कैसे समझाएं मुझे नहीं मालूम कि ये अडोबी में आवाज़ आ रही है या नहीं, जिनको सवाल यहाँ पर था वहाँ पर तो कह रहे हैं कि दूसरे में आवाज़ नहीं जा रही। अच्छा तो पता नहीं किसी वजह से अडोबी में आवाज़ कह रहे नहीं जा रही। खैर तो बहरहाल हमें यही समझाना है, असल ये है कि बच्चों को ये समझाना है कि सुलहा का तरीक़ा, ये चीज़ें सिर्फ वक्त पर नहीं कि जब वैलेंटाइन डे आ गया उस वक्त समझाया जाए, एक मुस्तकिल तरबियत होती है, मुस्तकिल तरबियत होती है, मुस्तकिल समझाया जाता है कि अच्छा देखो अल्लाह वालों से ताल्लुक़, उलमा से ताल्लुक़, सुलहा से ताल्लुक़, गैरों के तरीक़े से दूर रहना, ये मुस्तकिल जहन साजी होती है, जहन साजी होती है, जब ये होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके जहनों में बात बैठेगी। ऐसा यानी एक होता है ना कि जब प्यास लगी तब कुआं खोदने लग जाते हैं, जब वैलेंटाइंस डे आ गया उस वक्त हम समझाने बैठेंगे। तो उससे पूरी तरह फ़ायदा नहीं होता, पहले से जहन बनाया जाए ताकि एक सोच उनकी दुरुस्त हो, उनकी समझ दुरुस्त हो, तो फिर एक एक चीज़ नहीं समझानी पड़ेगी कि देखो ये गैरों का तरीक़ा ना करो, ये गैरों का तरीक़ा ना करो, एक बुनियाद उनके जहन में बन जाए कि हमें सुलहा का तरीक़ा इख्तियार करना है और दूसरों का तरीक़ा गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन उनका तरीक़ा छोड़ना है। अच्छा, आवाज़ दरमियान में वहाँ बंद हो गई थी। ठीक है, सवाल ये है कि लॉन्ग ड्राइव में घर से वुज़ू करके निकलें और गाड़ी की सीट पर टेक लगा, आंख लग जाए तो वुज़ू टूटेगा या नहीं टूटेगा। अच्छा सवाल है कि वुज़ू है, सफ़र में निकले और गाड़ी की सीट पे जैसे टेक लगा कर बैठते हैं, इस तरह टेक लगा कर बैठ गए, आंख लग गई तो वुज़ू टूटेगा या नहीं टूटेगा। ये बात जहन में रहे कि हमारी किताबों में आम तौर पर जो लिखा होता है वो ये है कि किसी भी चीज़ पे इंसान अगर टेक लगा के सो जाए तो वुज़ू टूट जाता है, लेकिन इसमें तफसील है और इसमें उलमाए हनफिया की दोनों राय हैं। और जैसे बास फतावा में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि मुफ्ता भी कौल ये है कि सिर्फ टेक लगाकर सोने से वुज़ू नहीं टूटता, बल्कि ये ज़रूरी है कि इंसान इस तरह सो जाए कि जिसको कहते हैं गहरी नींद आना, या ये कि इंसान सीधा बैठकर नहीं बल्कि थोड़ा सा झुक के सो जाए, यानी मसलन सीट को पीछे करके। एक तो होता है ना सीट जैसे आमतौर से होती है तकरीबन सीधी होती है, एक होता है कि इंसान जैसे लेटने के अंदाज में सो जाए, ज़रा सा सीट को पीछे कर ले या खुद आगे पीछे नीचे से आगे होकर ज़रा लेटने का अंदाज़ इख्तियार कर ले, तो ज़मीन के साथ जिसको हम अरबी में कहा जाता है कि तमकीनुल मक़अदि अलल अर्द, कि इंसान सुरीन ज़मीन पर अगर पूरा वज़न सुरीन पर आ रहा है तो उस हालत में आमतौर पर रीह खारिज नहीं होती, इंसान का वज़ू नहीं टूटता। बहरहाल तो ऐसी नींद जिसमें इंसान ज़मीन के साथ जम कर बैठा हुआ है, चाहे हल्की सी टेक इधर उधर पीछे लगाई हुई है, तो ऐसी नींद नाकिज़ा वुज़ू नहीं है, इलाके बहुत गहरी नींद आ जाए तो अलग बात है। और अगर थोड़ा सा लेटने का अंदाज़ इख्तियार कर लिया, ज़्यादा टेक लगा ली पीछे की तरफ, सीट पीछे कर ली और फिर सो गया तो वुज़ू टूट जाता है। अच्छा, एक और सवाल लिपस्टिक के बारे में। जो मेकअप वगैरह के अंदर कलर डालते हैं उसमें बास कलर में कीड़े इस्तेमाल करते हैं, ये जो कारमाइन वगैरह जो कीड़े इस्तेमाल करते हैं और कलर कलर के लिए भी करते हैं, बास दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं, कीड़ों के बारे में, कीड़े मकोड़े हशरात जो चीज़ें होती हैं इनके बारे में एक उसूल ये लिखा है, ये बयान फरमाया है उलमा ने कि इसकी जो उसको खाने की, उसको जिस्म के अंदर डालने की और खाने की जो ममानात है वो उस लिहाज से है कि ये जिसको कुरान ने कहा वो हुर्रिम अलैहिमुल खबाइस, युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, यानी गोया कि ये गंदी चीज़ है, गोया कि फ़ी नफ़्सी ही ये हराम या फ़ी नफ़्सी ही ये नाजायज़ नहीं है, नापाक भी नहीं है, लेकिन चूंकि इंसान की तबीयत इससे गिन महसूस करती है इस लिहाज से इसको मना किया गया है। ये फुकाहा के बयान की हुई बातों का मैं खुलासा बता रहा हूँ। और ये जब कलर वगैरह इसमें से निकालते हैं और बहुत सी और भी चीज़ों में शेरलाक वगैरह इस तरह की पता नहीं और भी चीज़ें जो बनाते हैं, तो उसमें कीड़ों के बाज़ वो अज्ज़ा इस्तेमाल करते हैं जिसको, यानी हम इस तरह इसको तशबीह दे सकते हैं जैसे शहद की मक्खी शहद बनाती है, अगरचे शहद की तो हिल्लत कुरान करीम में है, उसका ज़ाहिर है कि वो मिसाल में सिर्फ मिसाल समझाने के अंदाज़े बता रहा हूँ कि शहद तो उसके तो खैर फी शिफा व लिन्नास कुरान ने उसको बताया, लेकिन और भी कीड़ों में इस तरह की चीज़ें होती हैं। हासिल इसका यह है कि अगर और कोई चीज़ है उसके बदले में तो वो इस्तेमाल कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है, न इस्तेमाल करना अच्छा है, लेकिन हम इसको हराम नहीं कहेंगे और नापाक तो बहरहाल नहीं है, क्योंकि असल खाने की चीज़ नहीं है तो नापाक नहीं है, इस्तेमाल करना दुरुस्त है, अगर और कोई इस्तेमाल कर लें तो बेहतर है। अच्छा, ये हो गया। आज सवाल ज़्यादा जमा हो गए लगता है। सवाल ये है कि کلاس کے آخر میں ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے کہ جس سے ثواب بڑھ جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کسی مجلس میں بیٹھے تو مجلس کے بعد جو سب کو ہی یاد ہوگا, مجلس کے بعد کی دعا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, یہ پڑھ لینا چاہیے. اس مجلس میں اگر کوئی غلط کام ہو گیا ہے تو یہ دعا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی. اگر غلطی سے کوئی غلط کام ہو, قصدن جو گناہ کیے وہ تو نہیں, جو غلط کام ہو گیا ہے تو یہ جو جملہ ہم نے پڑھا, یہ کلمہ, یہ کفارہ بن جائے گا. اور اگر اس میں نیک عمل کیا ہے تو وہ عمل اللہ کے یہاں اس پر سیل لگ جاتی ہے, مہر لگ جاتی ہے, گویا کہ مقبول ہو جاتا ہے وہ عمل. تو اس لیے جب بھی کسی مجلس میں بیٹھیں, جب مجلس ختم ہونے لگے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اچھا, سوال یہ ہے کہ چھوٹا درود زیادہ مقدار میں پڑھیں یہ بہتر ہے یا جو درود ابراہیم ہیں وہ کم مقدار میں پڑھیں؟ اصل یہ ہے کہ جس میں زیادہ دل لگے, اس پر تو علماء کا اتفاق ہے تقریباً کہ جو لمبا درود ہے درود ابراہیم وہ سب سے افضل ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کو زیادہ مقدار میں انسان پڑھتا ہے تو عام طور پر انسان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ اس میں انسان ذرا اکتانے لگ جاتا ہے, یعنی اس لیے کہ مقدار میں کم ہوتا ہے. تو وہ پڑھ لے چند بار اور اس کے بعد مختصر درود زیادہ مقدار میں پڑھ لے, اس میں شاید دل زیادہ لگے گا کہ مثلاً 100 کا عادت پورا کر لیا, 200 کا عادت پورا کر لیا, تو اس میں دل زیادہ لگے گا. اور دل کے دھیان کے ساتھ اور دل لگا کر کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ کین وی سے سیدنا ابراہیم؟ ہاں, درود شریف میں سیدنا ابراہیم کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, یعنی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم. ہاں ضرور, اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ انبیاء میں اللہ تعالی نے ان کو بہت اونچا مقام دیا, اور اعظم پیغمبر 5 ہیں, ان میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں. تو اس لحاظ سے سیدنا کا لفظ کہنا چاہیے اور کہہ سکتے ہیں. سوال ہے, اچھا وہ کوئی طویل حدیث نقل کی ہے, اس کو پھر دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, وہ بہرحال وہ پہلے سوال جو میں نے پہلے جو سوال آیا تھا اسی کے متعلق تھے, وہ جو حدیث ہے اس کو بیان کیا ہے کسی نے. اچھا ہوا کہ کسی کے سامنے وہ حدیث تھی اور اس نے وہ بیان بھی کر دی, ماشاءاللہ. اور حدیث پوری فتح الباری سے نقل کر دی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے جو لوگ استعمال کرتے ہیں یہ آئی براؤز کے لیے, تو وہ اس کے لیے ہے ہی نہیں, وہ تو پیشانی کے بال, پیشانی پر آنے والے جو زائد بال ہوتے ہیں اس کے لیے ہوتا ہے. اچھا, سوال ہے, شوگر ٹیسٹ جب کرتے ہیں تو فنگر, ہاں جب شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے خون نکلتا ہے, جب خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا, تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, میرے خیال ہے سوالات ہو گئے, انشاءاللہ کوئی بیچ میں چھوٹا تو نہیں ہوگا سوال. پھر شام کو انشاءاللہ 8:20 پہ انشاءاللہ جمع ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.